ओम धन सत्यम। कर्म गति पर विचार चल रहा है, इस पर पहले वाणी का पाठ होगा। इस वाणी में कर्म गति की जो फिलॉसफी है उसका बड़ा ही सरल रूप में दिग्दर्शन किया गया है। इसको सभी से प्रार्थना है कि ध्यान पूर्वक श्रवण करें।
बिख बीजे नर बिख ही पाए, ऊंच नीच जूनी भर माए, मूरख मन में नित मद धारी, पाप पुन नहीं हिये विचारी, तुच्छ जीवन का नित धरे गुमाना, काल चकर नहीं देखे अनजाना, किसका कौन जगत में होई, कर्म संजोग सब चकर चलोई, लेन देन में भय संग साथी, लेखा चुका नहीं भयो कोई नाती, कितेले न लेवे किते देन मुकाए, कर्म गति संग साक बनाए, अनुमत जीव का सत मित्र न कोई, अपनी करनी का लेख परोई, छिन छिन जो नर करें विकारा, धर्म राज घट करी पुकारा, हृदय माही नित लेख लखाई, शुभ अशुभ जो कर्म कमाई, पाप पुन जो मन तन में ध्याई, गुण अवगुण नित बुद्ध में संचाई, जिस जेस भात जिया कर्म को कीजे, तिस अनुकूल बुद्ध रूप लखीजे, सतगुण तम गुण रज गुण माया, हंग बुद्ध अज्ञान स्वरूप धराया, त्रैगुण माया में जीव भर माई, तिस अनुकूल कर्म चकर चलाई, जिस गुण धार कर्म को भोगे, उस ही स्वभाव वश जीव भयो रोगे, स्वभाव स्वरूप कर्म का बिंद, त्रैगुण माया का असली पिंड, स्वभाव बस नित जीव रहाई, लख चौरासी में फेर फिराई, जैसा कर्म जीवन में धारी, तिस अनुकूल नित सुभाओ विचारी। सुभाओ बस होए जीव पिंड को धारे, सुख दुख रूप नरक स्वर्ग विचारे। सातक कर्म से सुभाओ सातक होई, सातक सुभाओ से देव गति लखोई। राजस कर्म से सुभाओ राजस पावे, राजस सुभाओ मंद गति दिखावे। तामस कर्म से सुभाओ तामस होई, तामस सुभाओ नीच गति परोई। सुभाओ वश होए नित गवन विचारी, सुख दुख कर्म फल भोग लखारी। जैसा सुभाव धर देह को धारे, तिस अनुकूल करे कर्म व्यवहारे। ज्यो ज्यो नवीन कर्म संचारी, अति अत चंचल सुभाव वर तारी। कर्म गति अपार है, जीव नहीं छूटन पाए। मंगत जैसी कामना ऐसे रूप समाए। कर्म गति अपार है, जीव नहीं छूटन पाए। मंगत जैसी कामना ऐसे रूप समाए।
महाभारत में महर्षि वेदव्यास कह रहे हैं, धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायां महाजनो येन गतः स पन्थ। अर्थात धर्म का तत्व बड़ा ही गहन है, बड़ा ही कठिन है, लेकिन जिस मार्ग पर सत्पुरुष गए हैं या जिस मार्ग को सत्पुरुष ने तय किया है, कहते हैं वही मार्ग जो है हमारा मार्गदर्शन किया करता है। अर्थात सत्पुरुषों ने जिस प्रकार से अपने जीवन में धर्म को अपनाया, जिस प्रकार से धर्म पर चले, और जो ज्ञान उन्होंने हमको दिया, यदि उस ज्ञान को हम यदि समझ लें, तब ये धर्म का तत्व जो कि बड़ा ही गहन है, ये बड़ा ही सरल हो जाता है। तो ये जो कर्म गति है, एक तो आपने जैसा कि सत्संग में सुना, अभी जो पहले विचार चल रहे थे, इसकी जो आखिरी अवस्था है निर्बंधन अवस्था, वो तो एक बड़ी ही कठिन अवस्था है। शायद वो हम सबके मतलब कि आज की परिस्थिति में ना भी। तो प्रश्न उठता है कि हम इस कर्म गति के उसको समझकर आज जिस प्रकार से चल रहे हैं, अपने मार्ग को करेक्ट कैसे करें या ठीक कैसे चलें। इस विषय का यही उद्देश्य है, अन्य कोई उद्देश्य नहीं। आज हम जहां जिस हालत में खड़े हुए हैं,
इस कर्मपति को किस प्रकार से समझें कि हमारे चलन में संशोधन हो जाए, हमारा चलन जो है वो दुरुस्त हो जाए। ये जो वाणी अभी आपके सामने पढ़ी जा रही थी, इसमें हम उस सिद्धांत को जरा समझने की कोशिश करें। जो कुछ भी हम कर्म करते हैं, वाणी कह रही है, हृदय माही नित लेख लखाई, शुभ अशुभ जो कर्म कमाई, और पाप पुण्य जो मन तन में ध्याई, गुण और गुण नित बुद्ध में संचाई। हम जो कुछ भी कर्म करते हैं वो हमारा सारा जो है वो मन के अंदर संचित हो जाता है, और उसका जो फाइनल इफेक्ट है, जो अंतिम उसका असर है, वो कहते हैं गुण और गुण नित बुद्ध में संचाई। उसका जो सार है, उसका जो इफेक्ट है, उसका संचय हमारी बुद्धि में हो जाता है। गुरुदेव ने कहा है कि ये बुद्धि ही जीव है, ये उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि हम जानते हैं कि जो निर्णय करता है वही मैं हूं, और निर्णय करने वाली सत्ता इस शरीर में बुद्धि है। इसलिए उन्होंने इसके और आगे बारीकी ना कहकर उन्होंने यही खत्म कर दिया कि जो निर्णय करने वाली सत्ता है वही तू है, अर्थात वही जीव है। तो मैं जो निर्णय करने वाली सत्ता हूं, मैं जो जीव हूं, ये मैं जो कुछ भी कर्म करता हूं, इसका इफेक्ट मेरे अंदर ही वो केंद्रित हो जाता है, मेरी बुद्धि में वो संचित हो जाता है। इसको आगे खोलते हैं, देखिए, क्योंकि ये जो दर्शन है या ये जो फिलॉसफी है, इसको यदि ठीक प्रकार से समझ लिया जाए तो ये हमारे चलने में बड़ी सहायता करती है, हम कर्म में लापरवाही फिर नहीं करते। आगे कहते हैं कि जिस जिस भांत जिया कर्म को कीजिए, तिस अनुकूल बुद्ध रूप लखीजे। जिस प्रकार के जीव कर्म करता है उसी प्रकार की उसकी बुद्धि का निर्माण होता है, अर्थात मेरा निर्माण होता है। तो सतगुण तमगुण रजगुण माया, हंग बुद्ध अज्ञान स्वरूप धराया। तो ये जो मेरा बुद्धि में जो संचित होता है कर्म का इफेक्ट, तो कहते हैं कि ये सतोगुण रूप, रजोगुण रूप और तमोगुण रूप में होता है, क्योंकि सारी प्रकृति इन तीन गुणों में ही कार्य कर रही है, और मेरा जो जीवन का चलन है वो भी पूरी तरह से प्राकृतिक है, अर्थात तीन गुणों में ही मेरा चलना हो रहा है। तो जो कुछ भी कर्म करूंगा उसका जो इफेक्ट होगा वो या तो रजोगुण के रूप में होगा, या सतोगुण के रूप में होगा, या तमोगुण के रूप में होगा। और ये तीनों क्या हैं? वो कहते हैं कि स्वभाव स्वरूप कर्म का बिंद, त्रैगुण माया का असली पिंड। तो ये तीनों गुण क्या हैं? यही मनुष्य के स्वभाव भी हैं। कोई मनुष्य सतोगुणी होता है, कोई रजोगुणी स्वभाव का होता है, कोई तमोगुणी स्वभाव का होता है, और कहते हैं यही स्वभाव है, ये कर्म का बिंद है। बिंद वीरे को भी कहते हैं, बिंद बीज को भी कहते हैं। तो हमारे अंदर कर्म की जो प्रेरणा उठती है, कर्म की जो इच्छा होती है, तो जिस प्रकार का मेरा स्वभाव है उसी प्रकार के कर्म की इच्छा मेरे अंदर से जागृत होती है। देखा होगा कि आप कोई अच्छा काम करिए, कोई शैतान बालक आएगा, उस काम को आपको बिगाड़ के चला जाएगा। कोई अच्छा सा बोर्ड आप लगा दीजिए, सुंदर सा, कोई आएगा उसके ऊपर लकीर खींच के चला जाएगा। तो आपका स्वभाव है सतोगुणी, अच्छा कर्म कर रहे हैं, उसका स्वभाव है तमोगुणी, तो उल्टा कर्म कर रहा है। तो हर व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार कर्म कर रहा है। तो ये जो स्वभाव है ये सतोगुण रजोगुण तमोगुण होता है, इसलिए कहा गया कि कर्म का ये क्या है, ये कर्म का बिंद है, ये कर्म की जड़ है। आगे क्या कहते हैं, स्वभाव बस होए जीव पिंड को धारे, सुख दुख रूप नरक स्वर्ग विचारे। और स्वभाव के अनुसार ही मनुष्य अपना शरीर धारण करता है और उस स्वर्ग नरक का दुख भोगता है। स्वर्ग नरक क्या है कि हमारा शरीर जिस अवस्था में जन्म लेता है वो अवस्थाएं स्वर्ग रूप भी हो सकती है, वो नरक रूप भी हो सकती है। सातक कर्म से स्वभाव सातक हुई, सातक स्वभाव देवगति लगोई। और जिसका सतोगुण स्वभाव होता है, कहते हैं उसके कर्म सतोगुणी होते हैं, जिनका जो रिजल्ट होता है वो देवताओं के समान सुख देने वाला होता है, इसलिए उस जीव की देवगति होती है। और कहते हैं जिसका राजस स्वभाव होता है, राजसी स्वभाव होता है, कहते हैं वो मंद गति उसकी उसको प्राप्त होती है। और जिसका तमोगुणी स्वभाव होता है उसको नीच गति प्राप्त होती है, अर्थात वो मनुष्य योनि से भी नीचे गिर जाता है। और इसी स्वभाव के अनुकूल मनुष्य जो है अपने जीवन में सारे के सारे सुख, सारे के सारे दुख भोगता है। हमारे यहां जो 18 पुराण हैं, उसमें सबसे जो प्रसिद्ध पुराण है, इसके भारत में काफी कथाएं होती हैं, वो है श्रीमद् भागवत पुराण। तो भागवत पुराण में यदि आज हम यदि पूरा पूरा पुराण जो है पढ़कर देखें, तो आपको पढ़ने मात्र से पता लग जाएगा कि इसमें काफी मिलावट है। इसलिए उसको बड़े ही ध्यान से पढ़ना पड़ता है कि कहां असली तत्व भी मौजूद है, कहां हमारे जो संस्कृत जानने वाले जो ब्राह्मण कुल था उन्होंने कहां कहां उसने मिलावट कर दी अपना अपना उल्लू सीधा करने की। तो उसके 11वें स्कंद में अभी भी जो है सारा का सारा जितना भी हमारा जो आध्यात्मिक जो फिलॉसफी है वो सारे के सारे 11वें स्कंद में अभी भी वो ठीक ठाक उपलब्ध है। वहां कुछ जगह मिलावट हुई है लेकिन अधिकतर अभी भी शुद्ध रूप में मौजूद है। तो वहां पर ये कर्म गति के बारे में एक विवेचन आया था, वो मैंने इसमें नोट किया है, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। हमारे यहां जो कर्म गति के अनुसार चार युग का निर्माण कहा गया है, जैसा कि हमारे पुराणों में लिखा हुआ है, ये आज का जो युग है जिसमें जी रहे हैं इसको कलयुग कहा गया है। इस कलयुग में तमोगुण प्रधान होता है। इससे जो पिछला कुल है, जो भगवान कृष्ण का कुल कहा जाता है और जिसका अंत कहते हैं महाजा परीक्षित, जो अभिमन्यु के जो बेटे थे महाराजा परीक्षित, महाराजा परीक्षित की मौत के पश्चात ही इस कलयुग का प्रारंभ कहा जाता है। तो जो कृष्ण का कुल है वो द्वापर युग कहा जाता है। उससे पहले राम का जो कुल था, राम का जो वक्त था, उसको त्रेता युग कहा जाता है। और उससे पहले जो प्रहलाद का युग था उसको हम सतयुग कहा करते हैं। लेकिन उस 11वें स्कंद में जो इन चारों कुलों का, चारों युग का जो विवेचन किया गया है, वो जरा ध्यान से सुनने की चीज है, क्योंकि इस सब्जेक्ट से ये बात जो है बिल्कुल मेल खाती है। अब देखिए उसका मूल रूप में आपके सामने रखता हूं, क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि ये चारों युग पता नहीं कहीं लिखा हुआ है लाखों वर्ष का कलयुग होता है, तो हम निराश होते हैं कि हमें तो लाखों वर्ष जो है पता नहीं कितने जन्म कलयुग में ही रहना पड़ेगा। लेकिन जहां ये विवेचन लिखा है उसी शास्त्र में यह भी विवेचन किया हुआ है कि वास्तव में ये चारों युग है क्या, उसका विवेचन जरा श्रवण करके देखें। सभी प्राणियों में तीन गुण होते हैं, सत्व, रज और तम। जिस समय मन, बुद्धि और इंद्रियां सत्व गुण में स्थित होकर अपना अपना काम करने लगती हैं, उस समय सतयुग समझना चाहिए। देखिए भागवत पुराण कह रहा है, जिसकी कथाएं कह कहकर और लोगों को ये पाठ पढ़ा पढ़ाकर कि भाई इसके सुनने मात्र से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, इतने यज्ञों का पुण्य तुमको प्राप्त हो जाएगा, सारी आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी, इस प्रकार के पंडितों की कथा सुन सुनकर इस भागवत पुराण की लोग जो है कितने अंधविश्वास में लोग मशगूल हो गए। लेकिन उसी भागवत पुराण में सत्य बात भी लिखी हुई, वो कहते हैं कि जिस समय मन, बुद्धि और इंद्रियां सत्व गुण में स्थित होकर अपना अपना काम करने लगती हैं, उस समय सतयुग समझना चाहिए। सत्व गुण की प्रधानता के समय मनुष्य ज्ञान और तपस्या से अधिक प्रेम करने लगता है, ये उसकी पहचान है। सत्व गुण की प्रधानता के समय मनुष्य ज्ञान और तपस्या से अधिक प्रेम करने लगता है। और कहते हैं कि जिस समय मनुष्यों की प्रवृत्ति और रुचि धर्म, अर्थ और लौकिक पारलौकिक सुख भोग की ओर होती है तथा शरीर, मन एवं इंद्रियां रजोगुण में स्थित होकर काम करने लगती हैं, उस समय समझना चाहिए त्रेता युग काम कर रहा है। त्रेता युग का मतलब यह हुआ कि मनुष्य अपनी मेहनत से, ईमानदारी से पैसा कमाता है, और यज्ञ भी करता है, दान भी करता है, लेकिन वो सब कुछ निष्काम रूप में नहीं करता। मेरे जीवन में कोई दुख ना आए, मैं सदैव सुखी रहूं, इस भाव के लेकर ही वो सारे जो है वो ये धर्म कर्म किया करता है। और अपने यही कहें लौकिक पारलौकिक सुख का मतलब यही है कि इस जन्म में भी सुख मिले और मृत्यु के पश्चात भी, यानी जिस मैं भी उसमें योनि में जाऊं वहां भी मुझको अर्थात परलोक में भी मुझको सुख मिले। तो जिस समय मनुष्य की इस ओर प्रवृत्ति होती है, अर्थात धर्म भी अपनाता है वो और साथ में जो है वो लौकिक सुखों के लिए प्रयत्न भी करता है, तो कहते हैं उस समय जो है वो त्रेता युग समझना चाहिए। इसके पश्चात जिस समय लोभ असंतोष अभिमान दंभ और मत्सर कहते हैं ईर्ष्या, एक दूसरे के सुखों को देखकर जलन पैदा हो जाना, यही मत्सर है। तो जिस समय लोभ असंतोष अभिमान दंभ और मत्सर आदि दोषों का बोलबाला हो और मनुष्य बड़े उत्साह तथा रुचि के साथ सकाम कर्मों में लगना चाहे, उस समय द्वापर युग समझना चाहिए। रजोगुण और तमोगुण की मिश्रित प्रधानता का नाम ही द्वापर युग है। हम समझते होंगे भगवान कृष्ण का बड़ा अच्छा युग था, लेकिन ये बातें जो लिखी है भागवत पुराण में ये बिल्कुल ठीक लिखी है। वो कहते हैं कि वहां पर लोभ असंतोष अभिमान दंभ और मत्सर ये किस कदर जो है वो बढ़े हुए थे इस समय, कि भगवान कृष्ण को कितने युद्ध करने पड़े। आज जरा विचार करते थे, कौरवों का पूरा कुल सर्वनाश करना पड़ा और उस दुर्योधन के साथ जितने साथी राजा थे आधे हिंदुस्तान के, उनका भी सर्वनाश करना पड़ा। और इतना ही नहीं करना पड़ा, उनका अपना जो यादव कुल था उसका भी सर्वनाश उनको करना पड़ा। वो एक नीति से किया, उन्होंने खुद युद्ध करके नहीं किया, लेकिन वो रचना रची कि वो यादव कुल का आपस में लड़ लड़के वो समाप्त हो। ये था द्वापर युग भगवान कृष्ण का युग। सुनने में लगता होगा कि बड़ा ही अच्छा युग होगा, लेकिन ये बात जो भागवत पुराण में लिखी है ऐसे नहीं लिखी, ये बात बिल्कुल सत्य है। वो कहते हैं कि जिस समय लोभ असंतोष अभिमान दंभ और मत्सर आदि दोषों का बोलबाला हो और मनुष्य बड़े उत्साह तथा रुचि के साथ सकाम कर्मों में लगना चाहे, उस समय द्वापर युग समझना चाहिए। रजोगुण और तमोगुण की मिश्रित प्रधानता का नाम ही द्वापर युग। और अंतिम कहते हैं जिस समय झूठ कपट तंद्रा निद्रा हिंसा विषाद शोक मोह भय और दीनता की प्रधानता हो, उसे तमोगुण प्रधान अर्थात कलयुग समझना चाहिए। तो ये जो बात कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि जिस समय मन बुद्धि और इंद्रियां सतोगुणी कर्म में लग जाएं, उस समय सतयुग होता है। और हम सबके मन बुद्धि इंद्रियां तो अलग अलग है, तो यदि इस शरीर में रहते हुए मैं यदि सतोगुणी बना हुआ हूं तो मैं सतयुग में ही निवास कर रहा हूं, मैं कलयुग में रहने वाला नहीं हूं। जी गुरुदेव सा शरीर जब उपस्थित थे संसार के अंदर, उनको देखकर उनके पास बैठकर लोगों के अंदर सतयुग प्रवेश कर जाता था। उस वातावरण में सतयुग नहीं था तो और क्या था, जो बैठे उनके पास वो तो जानते हैं इस बात के लिए। जो संसारी जीव उनके नजदीक चले जाया करते थे उस समय वो भी सतयुग में निवास किया करते थे, और वो गुरु वो तो सतयुग का रूप ही था। तो हमारी मन बुद्धि इंद्रियां जिस भाव में लीन रहती हैं, या कहें जिस तरह के विचारों में लीन रहती हैं और जिस तरह के कर्मों में लीन रहती हैं, हम उसी युग में निवास करते होते हैं। ऐसा नहीं है कि आज से जो है 5 लाख साल बाद जो है वो सतयुग फिर आएगा और आप जो है कलयुग के बाद सतयुग में पहुंच जाओगे। आपको जब भी सतयुग आपके लिए आएगा इस शरीर में रहते हुए ही आएगा। और ऐसा मत समझिए कि सतयुग में हो गए तो आप राक्षस नहीं हो सकते, आप राक्षस हो सकते हो। भक्त प्रहलाद का युग तो सतयुग कहलाता है ना, उसका पिता हिरण्यकश्यप उसकी मृत्यु को प्रहलाद ने ही जो है वो दावत दी। यदि वो भगवान का भक्त नहीं होता तो वो लीला काहे को रची जाती, तो उस समय भी राक्षसी स्वभाव और ये जो सतोगुणी स्वभाव था प्रहलाद का था वो साथ साथ मौजूद थे, एक ही घर में मौजूद थे, पिता पुत्र के रूप में मौजूद थे। और राम का युग देख लो त्रेता युग है, कितने युद्ध करने पड़े, अयोध्या से जब चले श्रीलंका तक राक्षस ही मारते रहे वो। आज तो आपको राक्षस दिखाई भी नहीं पड़ेंगे, लेकिन उस समय उनको सारे राक्षस से राक्षस मिले। ये क्या हो गया, ये कैसा त्रेता युग था वो। हर युग में राक्षस और देवता हुआ करते, मात्र परसेंटेज का अंतर होता है। जिस समय सतोगुण जीव के परसेंटेज बढ़ जाए उस समय सतयुग हो गया, जिस समय जरा कम हो जाए त्रेता हो गया, और कम हो जाए द्वापर हो गया, और आम व्यक्ति यदि तमोगुणी दिखाई पड़े तो वो कलयुग हो गया। लेकिन हर युग में हर तरह के व्यक्ति मौजूद होते हैं, और ऋषियों का होना ही ये बात सिद्ध करता है कि हर युग में हर तरह के व्यक्ति मौजूद होते हैं। कि गुरु का प्रकट होना और शिष्यों का उनके नजदीक आना, ये बात अपने आप में सिद्ध करती है कि सतोगुणी जीव भी मौजूद है, क्योंकि उनके ऊपर कृपा करने के लिए ही ये सत्पुरुष जो है वो दिखाई पड़ा करते हैं, अन्यथा तो दिखाई पड़ने की जरूरत ही क्या है। सतगुरु सबसे पहले सतोगुणी जीव के लिए होता है, उसके पश्चात रजोगुणी तमोगुणी जीव के लिए होता है। सतोगुणी जीव का कल्याण तो जैसे ही गुरु मिला नहीं तैसे उसके अंदर जो है वो जमीन हसमनता उसका उसके अंदर अंतर पैदा हो जाता है, अर्थात वो कृपा शिष्य तुरंत ही उस कृपा को अनुभव करता है। अन्यथा कोई तमोगुणी जीव हो और पूर्ण कोई सतपुरुष उसको मिल भी जाए तो गुरुदेव कहा करते थे, प्रेमी यदि ब्रह्मा भी साक्षात तेरे सामने आए तो यही कहेंगे, प्रेमी सादा रहो सदाचारी बनो, और वो क्या करें, वापस क्या करेगा वो। क्योंकि आपका स्वभाव जब तक सतोगुणी नहीं होता ईश्वर कृपा को आप अनुभव नहीं कर सकते, वो संभव ही नहीं। अर्थात पहले हमको सतयुग तक पहुंचना होगा, इस कलयुग से सतयुग में प्रवेश करना होगा, और इस शरीर के अंदर रहते रहते प्रवेश करना होगा। और कौन प्रवेश करेगा भाई, बुद्धि ही तो प्रवेश करेगी, या यूं कहें कि मन ही तो प्रवेश करेगा। ये शरीर तो हमेशा ही कलयुगी है, इसमें विष्ठा भरी हुई है, मलमूत्र का थैला ये है, सब जानते हैं। इसकी एक माइक्रोफिल्म ऊपर की स्किन ने उतार दिया यदि, तो आप इस शरीर के दर्शन भी नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि क्या सारी सुंदरता आपकी एक वो पतली सी झिल्ली में छिपी हुई है भाई, कहीं सुंदरता है ही नहीं शरीर के अंदर। बड़ी एक माइक्रो साइज की फिल्म आप पूरे शरीर से उतार दीजिए, आपके शरीर का लेश मात्र कोई देखना भी नहीं चाहेगा, देखना दूर मैं कह रहा हूं छूना भी नहीं चाहेगा, इतनी नफरत की चीज है ये मनुष्य शरीर। तो किस मोह में फंसे हुए हम, उस पतली सी झिल्ली के मोह में फंसे हुए हैं, सारा सारा संसार हमारी उस पतली की झिल्ली में जो है समाया हुआ है। तो शरीर कभी सतगुण में प्रवेश नहीं करेगा, तो जो प्रवेश करेगा वो बुद्धि ही करेगी, अर्थात मैं ही प्रवेश करूंगा, क्योंकि मैं जीव रूप में बुद्धि रूप हूं, यहां तक मेरा अनुभव है। इसके आगे तो आज यदि विवेचन करें शास्त्र अनुसार विवेचन तो बड़ा बारीक है, लेकिन मेरी बुद्धि वहां तक पहुंच नहीं पाती, यहां तक मेरी बुद्धि बड़ी आराम से पहुंचा दिया, मैं बड़े आराम से पहुंचाता हूं कि मैं निर्णय करने वाली सत्ता हूं, मैं कर्म करने वाली सत्ता हूं, तो जो निर्णय करता है वही मैं हूं, कि मैं कहता हूं ये ठीक है या गलत, ये गलत है, ये निर्णय जो सत्ता कर रही है वही मैं। तो मैं तो कम से कम सतगुण में प्रवेश कर सकता हूं, या यूं कहें कि सतयुग में प्रवेश कर सकता हूं, और सतयुग में जो प्रवेश करता है वो ईश्वर का अनुभव भी करता है, इस शरीर में रहते रहते अनुभव करता है। सतोगुणी जीव इस शरीर में उपस्थित जो आत्मा है, इस शरीर में उपस्थित जो परम तत्व है, जो ईश्वर है, उसको ये जीव या ये बुद्धि अनुभव करती है, और उस अनुभव के अंदर इसको जो आनंद मिलता है संसार की तुलना में, कि संसार का जो सुख मिल रहा था उसके साथ साथ दुख चिपका हुआ था, एक सिक्के के जो है दो पहलू, जैसे कि दिन और रात सारी प्रकृति द्वंद्व रूप है, उसी प्रकार हर सुख के साथ दुख चिपका हुआ था, इसी कारण ये हर सुख में ये बेचैनी अनुभव कर रहा था, हर सुख में ये जीव बेचैनी अनुभव कर रहा था। लेकिन जब अंदर इसको उस ईश्वर का अनुभव होता है उस समय मात्र केवल आनंद की अनुभूति होती है, उसमें दुख मिश्रित नहीं होता,
ना उस आनंद के खोने की कोई खोने का कोई डर होता है। यहां तो चिंता हो जाती है, आज जो सुख मिला है पता नहीं कल रहेगा नहीं रहेगा। ये तो हो सकता है मैं अपनी धन संपत्ति काफी कमा लूं, लेकिन वो आपके पास इकट्ठे होते ही आपकी सुरक्षा का भय आपके पीछे लग जाएगा, क्योंकि ये सारी प्रकृति का निजाम ऐसा ही चल रहा है। यदि इस बारीकी से हम देखें तो ये प्रकृति का बिल्कुल ठीक निजाम है। जहां कोई आशा उत्पन्न होती है उसके साथ ही निराशा का जन्म हो जाता है, जहां कोई सुविधा उत्पन्न होती है उसके साथ ही असुविधा का जन्म हो जाता है। जितनी भी हमारी वैज्ञानिक रिसर्च है आप जरा देख लें, यदि किसी ने कोई एटॉमिक रिसर्च की तो उसके जो फायदे हुए इस मनुष्य जाति के लिए उसके बराबर में नुकसान भी बराबर के होगा। कहते ना कि हमारे एटॉमिक एक्सप्लोजन करेंगे शांति के लिए, तो शांति के लिए एटॉमिक एक्सप्लोजन क्या है? तो जो एटॉमिक एनर्जी का यूज है प्रैक्टिकल यूज, जैसे बिजली बनाने में करते हैं, अन्य मेडिकल साइंस में करते हैं, तो उसका जो प्रैक्टिकल यूज है जिससे मनुष्य को आराम मिलता है वो तो शांति का यूज है, और जो लोगों को मारने के लिए करते हैं वो अशांति के लिए। लेकिन एक सुविधा पैदा होती है और असुविधा उसके साथ ही जन्म ले लेती है। इसीलिए मनुष्य चाहे कुछ भी क्यों ना कर ले, कुछ भी क्यों ना कर ले, 100% ईमानदारी से कमाई करके भी संपत्ति इकट्ठी क्यों ना कर ले, लेकिन दुख उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। जिस प्रकार जहां तेरे पास पैसा आया नहीं, असुरक्षा का भय तेरे अंदर तुरंत मौजूद हो जाता है। तो ये जो सारा हमारा जो विज्ञान है ये बात सिद्ध कर रहा है कि मनुष्य यदि तमोगुण से सतोगुण गुण की तरफ नहीं बढ़ता तो उसकी दुर्गति हो जाती है। ये वाणी यही तो कह रही थी, जो तमोगुणी जीव है वो मंद गति हो जाती है, मंद गति का उसको नीच गति प्राप्त होती है, अर्थात मनुष्य शरीर से वो पशु शरीर उसको प्राप्त हो जाता है। और यदि सतोगुणी हो जाए तो कहते हैं देवगति प्राप्त हो जाती है। देवगति के दो ही मतलब होते हैं, या तो काफी सुख, और या यूं कहें कि उसके साथ उस सुख के साथ साथ ईश्वर का दर्शन, वो देवगति। तो हम जो कुछ भी कर्म करते हैं उसका जो प्रभाव है वो हमारी बुद्धि पर पड़ता है। इसीलिए गुरुदेव ने खान पान पर जोर दिया कि नशीले पदार्थ सेवन नहीं करना चाहिए। क्यों? हो सकता है किसी का हजमा और अच्छा हो जाए, ये तो हो सकता है। कोई कहे मैं एक पैग लेता हूं या आधा पैग लेता हूं मेरा हजमा बिल्कुल दुरुस्त रहता है, ये तो हो सकता है। लेकिन ये बुद्धि तेरी तमोगुणी हो जाएगी, ये साथ में होगा। तमोगुणी का मतलब है तू मनुष्य शरीर में रहते रहते तू पशु के समान कर्म करेगा। तो हमारे हर कर्म का इफेक्ट हमारे स्वभाव पर पड़ता है, ये याद रखिए। इसको सुख दुख से ही मत जोड़िए, इसका जो फाइनल इफेक्ट है वो स्वभाव के रूप में, ये याद रखिए। इसीलिए जो जीव जिस प्रकार कर्म करके आता है बचपन से ही उसका अलग अलग स्वभाव होता है, और उस स्वभाव के वशीभूत होकर वो सत्कर्म और दुष्कर्म दोनों करने के लिए मजबूर हो जाता है। गुरुदेव बचपन से देखिए गुरुदेव की हालत, वो कहते थे प्रेमी है 3 जन्म की कमाई, अब जाके बचपन में यह अवस्था प्राप्त हुई कि शुरू से ही ईश्वर का सारा बोध इनको है। तो सत्पुरुष से ये बात थी महाभारत की कि महाजनो ये न गता हसा पंथा, कि महाजन अर्थात ईश्वर के भक्त जिस ओर गए हैं उस ओर ही हम चलना सीखें। यदि उस ओर चलना सीखा तो कहते हैं धर्म का रहस्य हमारी बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। तो धर्म का रहस्य क्या है? वास्तव में धर्म का रहस्य और कुछ नहीं है, ये कर्म का रहस्य ही धर्म का रहस्य। तो जब मेरा स्वभाव सतोगुणी हो जाएगा, सत्कर्म करने वाला बनूंगा मैं, तो मेरे अंदर स्वाभाविक रूप में ईश्वर दर्शन की तीव्र इच्छा पैदा होगी। ईश्वर क्योंकि आपके अंदर ही मौजूद है, इसलिए वो तेरी इस प्यास को पूर्ण करने के लिए वो अवतार लेकर भी तेरे सामने खड़ा हो जाएगा और तेरा मार्गदर्शन करेगा। शरीर रूप में मौजूद नहीं भी हुआ तो तेरा कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकाल देगा, कोई ना कोई व्यक्ति तेरे सामने उपस्थित कर देगा जो पूर्ण तेरा मार्गदर्शन करके उस ओर तुझे ले जाए। और यहां तक सत्य है कि स्वप्न में आकर भी लोगों का मार्गदर्शन सब कुछ कर जाया करते हैं, जिन्होंने कभी देखा भी नहीं। रामकृष्ण परमहंस तो कहा करते थे कि स्वप्न में सत्पुरुष का दिखाई पड़ना सच्चा स्वप्न होता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि कलयुग और सतयुग ये हमारे अपने कर्म पर निर्भर करता है। यदि हम रजोगुणी बन रहे अर्थात संसार के भोगों की तरफ हमारी वासना बनी रही तो हम कलयुग में पड़े रहेंगे। यदि हमारे अंदर ईश्वर दर्शन की वासना पैदा हो गई या यूं कहें कि ईश्वर दर्शन की इच्छा पैदा हो गई तो हम सतयुग में निवास करेंगे और तभी वास्तव में ये जो कर्म गति का सिद्धांत है इसका उपयोग हमारे लिए होगा। तो ये जो आज का सारा टॉपिक था उसमें यही ध्यान रखने की बात है, हम कर्म इस प्रकार के करें ताकि अंत में जो हमारी मृत्यु हो वो सतोगुण भाव में हो, ताकि अगला जन्म भी यदि मनुष्य का भी मिलता है तो कम से कम उसमें ईश्वर भक्ति करने को मिले, ईश्वर दर्शन करने को मिले और हमेशा के लिए आनंद संसार से विदा। ओम धन सत्य।